आईएलओ और यूनिसेफ का जो साझा ब्रीफ जारी किया गया है बाल मजदूरी पर, उसमें क्या प्रमुख बातें कही गई हैं?
मुख्यतः 9 तरह की वल्नरेबिलिटीज बताई गई हैं, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें हाईलाइट किया गया है कि पिछले 2 दशक में बाल श्रम के खिलाफ जो भी हमने मुहिम जारी की है, लड़ाई की है, उसमें कम से कम 94 मिलियन बच्चे कम हुए हैं और यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोविड के आने से यह संभावना बढ़ गई है कि जो अभी तक का प्रयास था वह एक चैलेंज में बदल गया है और संभावना यह है कि अब बाल श्रम पहली बार 20 साल के बाद पहली बार बाल श्रम की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और मुख्यतः उसमें जो मैंने बताया कि 9 वल्नरेबिलिटीज बात की गई है जो बाल श्रम को प्रभावित करते हैं, विशेषकर उसमें है पहला लिविंग स्टैंडर्ड, गिरता हुआ जो जीवन स्तर है। दूसरा है जो बिगड़ता हुआ बेरोजगार। थर्ड, इनफॉर्मेलिटी जिसको हम अनौपचारिकता कहते हैं, यह भी बढ़ रही है। और प्रेषण और प्रवास जिसे रेमिटेंसेस और माइग्रेशन का दर कम हो जाना। ऋण संकट जिसमें बहुत परिवार को अभी पैसे मिलने में कहीं से बैंक से या वित्तीय सहायता में परेशानी। और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का प्रॉब्लम। और सबसे इम्पोर्टेंट 2 बातें उसमें हुई हैं, जो स्कूलों का बंद हो जाना और यह बहुत हद तक बच्चों को प्रभावित कर रहा है, उनके एजुकेशन को, शिक्षा को, जिसके कारण बच्चे फिर से बाल श्रम की तरफ जा रहे हैं और जाने की संभावना है। और अंतिम बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो स्वास्थ्य को बहुत गहरा आघात हुआ है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, जो वल्नरेबिलिटीज मैंने काउंट कराया इनको रिसर्च में, इस ब्रीफ में बताया गया है, जो इम्पैक्ट है कोविड का इन सब कारणों से है।
तो जैसा कि आपने कहा कि 2000 से अब तक विश्व में बाल मजदूरी खत्म करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है, अगर दक्षिण एशिया और खासतौर पर भारत की बात करें तो इस क्षेत्र के आंकड़े क्या कहते हैं?
2000 से लेकर के और अब तक 2 दशकों में संख्या काफी कम हो गई, और फिर भी चैलेंज यह है कि वैश्विक स्तर पर 152 मिलियन बच्चे अभी भी बाल श्रम में है, और इनमें कम से कम 70% के आसपास में एग्रीकल्चर में है, कृषि कार्य में है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 48% बच्चे अभी खतरनाक काम में है, कार्य में जुटे हुए हैं। जहां तक एशिया, दक्षिण एशिया और खासतौर पर भारत की बात करें, तो इन दशकों में यहाँ भी नंबर काफी डिक्लाइन किया है। और स्वाभाविक है कि जब मैं वैश्विक नंबर देता हूँ तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अफ्रीका के बाद एशिया पैसिफिक का है, जिस एशिया पैसिफिक में साउथ एशिया और इंडिया भी आता है। एशिया पैसिफिक का जो नंबर है अफ्रीका के बाद ये दूसरे स्थान पर आता है, जो 7.5% अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे टोटल चाइल्ड लेबर का पॉपुलेशन है। इंडिया में आप पूरा सेंसस 2011 और NSSO दोनों के डेटा बताते हैं कि बहुत ही स्टीप डिक्लाइन हुआ है बाल श्रम के संख्या में। तो अभी तक बहुत ही प्रोग्रेसिव अचीवमेंट, डेवलपमेंट था, विकास की तरफ बढ़ रहे थे हम, लेकिन अभी एक ब्रेक लग जाने की संभावना है इस कोविड के खतरा के कारण।
तो ये सारे प्रयास बेकार न जाए, इसके लिए क्या सुझाव दिए गए हैं संक्षिप्त रिपोर्ट में?
हालांकि इसके विषय पर कभी अभी एक कोई स्टडी आना बाकी है, इसका अध्ययन करके एग्जैक्टली बताया जा सके कि किस तरह के चैलेंजेस, समस्याएं ज्यादा बच्चे फेस करेंगे फ्यूचर में। लेकिन सुझाव के रूप में इस रिपोर्ट में जो मुख्यतः फोकस किया गया है उसमें है कि जो गुणवत्ता है सार्वजनिक शिक्षा की, जिसे हम पब्लिक एजुकेशन कहते हैं, वो क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। और उसमें भी उसके एक्सेस, उसकी पहुंच उन तक, जो कि काफी इस नीड में है, जिन बच्चों को काफी जरूरत है, ऐसे परिवार के बच्चे जो इस एजुकेशन को, इस शिक्षा को नहीं ले पा रहे हैं, उनको दिलाने की कोशिश, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, यह पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी जो सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए, बच्चों के साथ साथ बच्चों के परिवार, और खास करके वैसे वल्नरेबल परिवार जिनके बच्चे या तो चाइल्ड लेबर में हैं, उनको निकालना, या ऐसी संभावना है कि उनकी जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है उसके कारण और कोविड से जो परिस्थितियां बनी है, इन सबको मिलाकर उनके बच्चे काम में जा सकते हैं, उन सभी को प्रायोरिटी बेसिस पे, प्राथमिकता के आधार पर सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत है। इसलिए इस रिपोर्ट में सेकंड प्रायोरिटी है, सामाजिक सुरक्षा सभी को दी जाए, ऐसा प्रावधान होना जरूरी है। और तीसरा और अंतिम जो बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी बच्चों और उनके परिवारों की रक्षा करने वाले कानून, खास करके श्रम कानून और विनियम, मतलब लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस, वैसे को संरक्षित करना, उनको प्रोटेक्ट करना और बल्कि और मजबूत करना, यह अभी समय की आवश्यकता है। तो इन तीनों जो प्रयास मैंने बताया, एजुकेशन, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानून और विनियम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको कैसे मजबूत करना और उनको कैसे बचा कर रखना, ये अभी इमीडिएट नीड है और जरूरत है, और इस रिपोर्ट में इसकी चर्चा हुई है।
तो भारत में आईएलओ बाल श्रम के क्षेत्र में किस तरह काम कर रहा है, क्या नीतिगत और जमीनी बदलाव हुए हैं पिछले कुछ सालों में?
भारत जो है आईएलओ का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, तो हमारा भारत का और आईएलओ का संबंध बहुत ही पुराना है, जब से आईएलओ बना है, अभी हमने 100 साल मनाया भी है पिछले साल। बाल श्रम के ऊपर ये जो दो मुख्य कानून है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम के जो स्टैंडर्ड है 182 और 138, इन दोनों को भारत ने 2017 में ही इनको रेटिफाई किया, और ये बहुत बड़ा कदम है भारत की तरफ से। आईएलओ हमेशा अपने गवर्नमेंट को और सोशल पार्टनर्स को, जो ट्रेड यूनियन से और एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन है, मूलतः इन तीनों को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। 1992 से ही आईएलओ के तकनीकी सहयोग से भारत में कई हस्तक्षेपों का समर्थन किया गया है, अनेक तरह के इंटरवेंशन हुए हैं। अगर वर्तमान में हम बात करें तो आईएलओ अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के साथ मिलकर के उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और वर्तमान में आईएलओ उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अगर हम नाम लें तो कुछ खास राज्यों में बाल श्रम को संबोधित करने के लिए और बाल श्रम की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए ये फोकस प्रोग्राम चला रहा है।
तो कोविड संकट के बाद की क्या रणनीति है, किस तरह से इस समस्या से निपटा जाएगा?
जो ऑलरेडी हमारे स्ट्रेटजीज हैं उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसको और मजबूत करेंगे हम, और साथ में कुछ नए स्ट्रेटजी को भी इसमें हम लागू करने का कोशिश करेंगे। बाल श्रम जब भी हम चर्चा करते हैं कोविड के कंटेक्स्ट में, तो कोविड के लिए जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चे और बाल श्रम से बच्चे कैसे बच सकें, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। जो भी हमारा प्रयत्न होगा कोविड-19 को टैकल करने के लिए, उसमें चाइल्ड लेबर को, बाल श्रम को भी प्रायोरिटी के रूप में देख करके, और बच्चे बाल श्रमिक न बने उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। दूसरा, जो गरीबी उन्मूलन, नौकरी और आजीविका को लक्षित करते हुए जो भी परिवार हैं, वैसे वल्नरेबल परिवार के बच्चों को विशेष तरह के सपोर्ट देने की कोशिश की जानी चाहिए। तीसरा, जब थोड़ी स्थिति सुधरती है कोविड के बाद, तो बच्चों को स्कूल में कैसे सुविधा दिलाई जाए और उनकी वापसी कैसी कराई जाए, और जो भी विद्यालय बंद होने से उनकी पढ़ाई को क्षति हुई, उसकी कैसे भरपाई की जाए, ये बहुत ही जरूरी होगा इस पर ध्यान देना। और चौथा, जो मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आईएलओ का इस पे बहुत फोकस है, कि सामाजिक सुरक्षा, जो बच्चे और बच्चे के परिवार को सामाजिक सुरक्षा के लिए किस तरह की नीति और किस तरह का उसका इम्प्लीमेंटेशन, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान देना होगा। जो प्रवासी बच्चे हैं और उनके परिवार हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, तो वहां पे जो वापस अपने घर गए हैं उनको भी स्कूल से जोड़ना, और उनके परिवार को उचित जीवन यापन की सुविधा दिलाना, सामाजिक सुरक्षा की सुविधा दिलाना, ये सब भी एक बहुत बड़ा काम होगा। और फाइनली, जो परिवार के बच्चे हैं, बच्चे मतलब मैं 18 साल से ऊपर की बात कर रहा हूँ, वो बच्चे नहीं है, वयस्क आप कह लें, तो वयस्क को रोजगार उन्मुखी स्किल ट्रेनिंग दिलाने पर फोकस करनी होगी। तो इन तीन चीज को अगर मान लें हम कि पोस्ट कोविड-19 के अगर देखें नजरिए में, ये तीनों चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि इस पे आईएलओ और आईएलओ के साथ जितने भी आईएलओ के कंस्टिट्यूएंट हैं प्लस अदर स्टेकहोल्डर्स से सबको मिलकर के काम करना होगा।
तो बाल श्रम दिवस पर आईएलओ की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे?
आज के समय सबसे जरूरत है बच्चे को बचाना, और इसीलिए इस कोविड-19 के समय जब हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मना रहे हैं, तो हमारा संदेश है आईएलओ की तरफ से कि अगर मैं कोट करूं, कि इस वक्त बच्चों को बाल श्रम से बचाना ही सबसे ज्यादा आवश्यक है, सब चीज से भी बचाना है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो बाल श्रम में न जाएं। इसके लिए हमें हर तरह के प्रयास करने हैं।